ज्योतिष एक बहुत गहरा शास्त्र है।
सत्यता की गारंटी तो कोई नहीं देता।
शास्त्र अपने आप में पूर्णतः सही है।
भविष्य जन्म कुंडली के हिसाब से ही चलता है।
ज्योतिष की डिग्री हो तो समाज उसको जल्दी से स्वीकार कर लेता है।
हर चीज प्रैक्टिकल चाहती है।
ज्योतिष स्वयं प्रमाण है।
ज्योतिषियों के ज्ञान में कमी है।
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में,
जिसका नाम है क्या सोचते हैं आप। मैं हूं दिनेश
और मैं हूं मीना। एनवी रेडियो के इस प्रस्तुति में इस बार हम बात करेंगे जरा हटके। ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग और वास्तु, आपका इन विधाओं में से कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामना तो जरूर हुआ होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो।
इसी विषय पर एक ब्रह्म ज्योतिष समागम किया गया, जिसमें शिरकत की देश के जाने माने ज्योतिषियों ने भोपाल के शहीद भवन में। आयोजन में मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग और वास्तु विधा पर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मंत्र को।
मंत्र, इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है, जबकि त्रा का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से। मंत्र जप से आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जप करने के अपने नियम भी होते हैं।
इसी तरह रहस्यमय विद्या है तंत्र। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है। तंत्र शास्त्र तीन भागों में विभक्त है, आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र।
दिनेश जी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय लग रहा है। अब आप संक्षिप्त में वास्तुशास्त्र के बारे में बताइए।
यह विद्या भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, जिसका संबंध दिशाओं और ऊर्जाओं से है। इसके अंतर्गत दिशाओं को आधार बनाकर आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को कुछ इस तरह सकारात्मक किया जाता है, ताकि वह मानव जीवन पर अपना प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके। प्रथम वास्तुविद विश्वकर्मा के अनुसार शास्त्र सम्मत निर्मित भवन विश्व को संपूर्ण सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है।
रोगी मनुष्य को रोग मुक्ति के लिए जितनी दवा जरूरी होती है, संसारी प्राणी को सुख शांति से जीवन यापन के लिए ज्योतिष, मंत्र, यंत्र और तंत्र विद्या का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। जिस प्रकार धन पतन का कारण नहीं होता, बल्कि धन का दुरुपयोग पतन का कारण होता है, ठीक उसी तरह ये सारी विद्याएं हानिप्रद नहीं है, केवल इनका दुरुपयोग हानिप्रद है।
जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या को लेकर लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। इन्हीं भ्रांतियों को मिटाने के लिए ही तो भोपाल में ब्रह्म ज्योतिष समागम किया गया, जिसमें देश भर के 101 ज्योतिषी शामिल हुए। इस समागम में ज्योतिष के बढ़ रहे बाजारवाद से आम जनता के सामने ज्योतिष की बिगड़ती छवि से विद्वान चिंता जता रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चेतन शर्मा जी से। ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास?
ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। लेकिन ये ज्योतिष जो है हमारे ऋषि मुनियों की देन है, कि ऋषि मुनियों ने हमें एक तरीके से ध्यान की अवस्था में ग्रहों का प्रभाव जो इस चराचर जगत में पशु पक्षी पेड़ पौधे यहाँ तक कि मानव के संस्कारों पर, मानव के क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा और वो ज़्यादा आता है, तो एक चंद्रमा का समुद्र पर प्रभाव पड़ता है। और हम देखते हैं कि मानव जाति के मनुष्य के खुद के अंदर भी थर्ड फोर्थ जितना समुद्र में पृथ्वी पे पानी है उसी अनुपात पे पानी रहता है। यानी कि ज्योतिष विज्ञान बताता है कि सूर्य, चंद्रमा और अनेक ग्रहों का, जो नव ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है इस पृथ्वी पर, इसी के अध्ययन का नाम एक तरीके से ज्योतिष।
साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। और फोटो क्लिनिक करके एक मशीन होती है, आप नॉर्मल उस पर चेकअप करवाओ और आप एक माला करो कोई भी बीज मंत्र की, उसके बाद ऑरा फोटो क्लिनिक पे चेक करवाओ, तो आप में जो बॉडी के में जो चेंजेस है वो प्रूव करता है वो जो मशीन है। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी ये जो है, साइंटिफिकली भी सब चीज़ प्रूव हो चुकी है।
ज्योतिष और साइंस से जब मैच किया तो 90% प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली से मैच करती है, तो 90% भविष्य जन्म कुंडली के हिसाब से ही चलता है, इसलिए उसके प्रश्नों का समाधान भी सही हो जाता है।
ज्योतिष शास्त्र, जिस पर प्राचीन समय से ही भरोसा किया जाता रहा है, लेकिन आज इसके प्रति संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसे खुद ज्योतिष भी मानते हैं। इस बारे में सबसे पहले जानते हैं सेलटेक्स से रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर छत्तीसगढ़ के ज्योतिष महेंद्र सिंह ठाकुर जी से।
कुछ बड़े लोग भी हैं जो पिछड़े दरवाजे से तो ज्योतिषी के पास जाएंगे परामर्श लेंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज्योतिष शास्त्र जिसको बढ़ना चाहिए, अभी तो हमारा जो देश में जो राजनीतिक स्थिति है ज्योतिषियों के लिए बहुत अनुकूल है, हिंदू धर्म के लिए अनुकूल है, वेदों के लिए अनुकूल है, फिर इसके पीछे अंधविश्वास क्यों कहा जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ज्ञान में कमी बोल सकते हैं, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, प्रैक्टिकल कोर्सेज होने चाहिए, उसमें सिद्ध लोगों को आना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए।
जब बात चल रही है विश्वास और अंधविश्वास की, तो चलिए इसी बारे में दूसरे ज्योतिषियों के भी अपने अपने विचार सुन लेते हैं सिलसिलेवार।
जन्म का सही समय लोग बताते नहीं हैं और उस गलत समय के आधार पर, गलत गणित के आधार पर गलत फलित ही हो पाता है। जो सही ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए सही गणित की आवश्यकता है।
आदर्श तो इससे प्रकृति में मैं समझता हूँ ईश्वर और गणित के अलावा कुछ आदर्श है ही नहीं। अगर हम मेडिकल साइंस में, अर्थशास्त्र में, किसी में भी जाते हैं, 100% सत्यता की गारंटी तो कोई नहीं देता।
ज्योतिष का क्षेत्र अंधेपन में चल रहा है, इस अंधेपन के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो व्यवस्थाएं शासन को लाना चाहिए, ताकि जो आम आदमी परेशान है जब वो आ जाता है और आम आदमी परेशान होकर जब उस बीच में आता है तो उसके सामने जो है जब गलत विचार लोग रख देते हैं या गलत बातें रख देते हैं तो उससे हमारा ज्योतिष जगत बदनाम होता है। ये हमारे पीड़ा का बहुत बड़ा विषय है।
तो सरकार की तरफ से इस विद्या को कहा गया है कि ये झूठी है या कुछ भी है, वैज्ञानिक मानते ही नहीं, वैज्ञानिक भाषा मानते ही नहीं, ये सिर्फ ज्योतिष और प्राची ज्योतिष में ही आ रहा है, प्राची विद्या के उसमें रूप में आता है। जब तक इसको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई आगे नहीं आएगा, और जो आते हैं तो उनका पता नहीं चलता। ये सब एक दूसरे को गुरु बना के और गुरु से शिक्षा प्राप्त करके ही ज्योतिषी बन रहे हैं।
ये तो रही विश्वास और अंधविश्वास की बात। वैसे आए दिन टीवी चैनल्स और अखबारों में साप्ताहिक और दैनिक भविष्य छपवाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आजकल प्रचलन हो गया है। ऐसे में ज्योतिष का आधा अधूरा ज्ञान मानो अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर मालूम होता है। आचार्य महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि इन हालातों में ज्योतिष के क्षेत्र में फर्जी ज्योतिषियों की गिनती बढ़ने से ज्योतिष की छवि बिगड़ी है।
ज्योतिष शास्त्र लोगों की आजीविका हो गया है, बहुत से लोगों की, उसके नाम से बहुत से असामाजिक तत्व भी ज्योतिष का बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में आ गए हैं, और ऐसे लोग जो ठग हर क्षेत्र में यहाँ भी है।
आइए अब सुनते हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आए योगेश नारायण मिश्र से ज्योतिष की व्याख्या।
जातक का भविष्य अंधकार में है और उस अंधकार में जीवन के बारे में बताने का जो शास्त्र है वही ज्योतिष कहलाया। जैसे ये पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी 360 डिग्री की, उस 360 डिग्री को 12 राशियों में विभक्त किया गया, 12 राशियाँ 30-30 डिग्री की बांटी गई, और 12 राशियों और ज्योतिष के जो लग्न चक्र बनता है वह भी 12 खानों का बनता है। 12 खाने 12 विविध विषयों का चिंतन करते हैं और उसके आधार पे फलित किया जाता है। तो गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, गणित की सूक्ष्मता ही फलित की सूक्ष्मता को प्रदर्शित करती है। जितना गणित सूक्ष्म मिलेगा ज्योतिषी को उतना फलित अच्छा किया जा सकेगा।
अब जानते हैं गणित और विज्ञान पर आधारित ज्योतिष शास्त्र की बात, जो न सिर्फ व्यक्ति बल्कि चर अचर घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। सुनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में गणित और ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी की बात।
ये हमारे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मनीषियों ने तपस्या के द्वारा जो शोध किए हैं उन शोध के ऊपर आधारित एक विज्ञान है, जो जातक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का फलित बताता है। जातक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ही नहीं, चर अचर जगत में होने वाली प्रत्येक घटना, भूकंप हैं, आनियाँ हैं, वर्षा है, गर्मी है, प्रत्येक घटना, ग्रहण है, सभी घटनाएं इसके द्वारा गणित के आधार पर तय करके निर्धारित की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं।
क्या आप जानते हैं व्यक्ति के आचार विचार, खानपान और स्वास्थ्य ग्रहों की दशा को प्रभावित कर सकते हैं? जी हाँ, ये सच है, और ये जानकारी दे रही हैं बैतूल की वंदना वाजपेयी।
हमारे जो जनरल सभी जो लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो उसको चेंज करना, किस तरीके से आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो कोऑर्डिनेट कर सकते हो ग्रहों से, अपने एनवायरनमेंट से, और किस तरीके से आप मतलब आपके चक्रों को बैलेंस करते हुए ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो।
वंदना वाजपेयी के बाद अब मिलते हैं मेरठ से आए आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा से, जिनका मानना है कि ज्योतिष एक सेवा है और सेवा से ही ये विद्या फलित फूलित होती है।
हमारा कार्य है सेवा करना, सामने चाहे कोई भी हो, जन्मपत्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, बामिस्ट्री हो या किसी प्रकार की भी हो, हम सभी के लिए चाहते हैं कि हम ज्योतिष का जो लक्ष्य है, जो ईश्वर ने हमें गॉड गिफ्ट किया है, उसको पूर्ण करना।
ज्योतिष कई तरह की विधाओं में विभाजित होता है और ज्योतिषी भी अलग अलग विधा में पारंगत होते हैं। छिंदवाड़ा जिले के बिछिया से आए वैभव लोनी प्रश्न लग्न विधा में पारंगत है और हमें बता रहे हैं कि वे इसके माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान कैसे करते हैं।
जब जातक आपके पास आता है तो दिमाग में कुछ समस्या लेके ही आता है, वैसे आता नहीं, तो वो जब प्रश्न करता है तो वो प्रश्न क्यों किया, उस समय की ग्रह स्थिति क्या है, उस हिसाब से उसका बिना नाम बिना जन्म तारीख बताए आप उसकी तत्कालिक ग्रह स्थिति के हिसाब से भविष्य वर्तन कर सकते हैं। इसमें जातक का जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान की आवश्यकता नहीं, उसके नाम की आवश्यकता नहीं, केवल वो आके सामने बैठ जाए और प्रश्न करे, उस प्रश्न के समय क्या चौघड़ियाँ चल रही है, ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, उस आधार पर हम भविष्य वर्तन कर सकते हैं।
ज्योतिष के क्षेत्र में कम हो रहे रुझान और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए ज्योतिष शास्त्र को भी चिकित्सा शास्त्र के समान ही सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इसमें बढ़ चुके बाजारवाद पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ये कहना है पंडित अरविंद भारद्वाज का।
ये सरकार को संरक्षण करना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जैसे चिकित्सा क्षेत्र है उसी टाइप से इसको भी मतलब एक अलग से संस्थान बना के इसका ज्ञान देना चाहिए। ये पूरा विज्ञान है, जब तक इसका संरक्षण नहीं होगा तब तक इसके दुष्परिणाम, और ये कह सकते हैं कि लोग ऐसे आते रहेंगे जो पूरे बाजारवाद फैलाया हुआ है।
भारतवर्ष में जब गुरुकुल परंपरा थी तो जैसे बनारस है, उज्जैन है, ऐसे और भी शहर हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि यंत्र बने हुए हैं और जंतर मंतर बने हुए हैं। उस जंतर मंतर के माध्यम से हम पंचांगीय अध्ययन करते थे, जाकर पृथ्वी के ऊपर यंत्र बने होते थे, उसमें सूर्य की छाया से समय निकालना, शंकु का दर्शन करना निकालना, ऐसे अनेक प्रकार के अध्ययन करते थे। आज वो विधि हमारी समाप्त हो गई, उसको शासन या कोई भी उतनी प्रबलता से महत्ता नहीं दे रहा है। पिछले वर्षों में हमने मध्य प्रदेश शासन के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाए थे और उसमें भारत सरकार ने 2000 के आसपास एक बहुमत के साथ में जो है लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो है ज्योतिष का जो है कोर्स सिखाने के लिए और उसका अध्ययन कराने के लिए जो है प्राथमिकता दी गई थी।
समागम में पहुंचे नाभा पंजाब से आए ललित कुमार से हमने देश के भविष्य के बारे में सवाल किए। सीमा की परिस्थितियों से लेकर 2019 के आम चुनावों पर भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भविष्यवाणी पूछी।
जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भारत की कुंडली है उसके हिसाब से वॉर की स्थिति कहीं भी नहीं है। हाँ, जो ये गोरिल्ला युद्ध चल रहा है ये बंद होने वाला नहीं है, चाहे कोई सरकार आए, कैसी भी सरकार आए, पाकिस्तान में आए, इंडिया में आए, परंतु अगले 7 साल तक इस तरह का कोई योग नहीं है कि हमारे यहाँ गोरिल्ला युद्ध बंद हो जाएगा। और जब 2025 में जाके इन चीज़ों का समाधान होगा और हम लोग एक वन नेशन की थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जर्मनी इकट्ठा हो गया, कोरिया इकट्ठा होने जा रहा है, तो ऐसी ही संभावना है कि भारत पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे समझौते हो जाएंगे जिससे ये लोग इकट्ठे होके अपने मसले हल करेंगे, परंतु वो होगा 2025 में भारत की कुंडली के अनुसार।
अब हम आपका परिचय करवा रहे हैं एक ऐसे ज्योतिष के छात्र से जो किसी का भी भूत और भविष्य सिर्फ चेहरा देखकर ही बता देते हैं। इस बात के गवाह हम भी बने। महाराष्ट्र के बीड में रहने वाले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले युवराज गोंडे ज्योतिष के ज्ञान को लोगों के बीच प्रमाणित करने के लिए ज्योतिष शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।
जो पारिवारिक ज्ञान आपके पास है, वो पारिवारिक ज्ञान के साथ साथ यदि आपके पास ज्योतिष की डिग्री हो तो समाज उसको जल्दी से स्वीकार कर लेता है। इसलिए पारिवारिक ज्ञान तो मिला है लेकिन डिग्री नहीं है, इसलिए हमने एजुकेशन संस्था में, ज्योतिष एजुकेशन संस्था में अप्लाई करके इसकी डिग्री लेने के प्रयास में है, ले भी लिया है, एजुकेशन चल रहा है।
हमारे समाज में विवाह के लिए वर वधु की कुंडली मिलाना बहुत सारे लोग जरूरी समझते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो कुंडली मिलान नहीं होने पर सब कुछ पसंद होते हुए भी शादी रोक दी जाती है। इस बारे में और जानते हैं मंडीदीप से आए पंडित बलराम दुबे से।
वर मांगलिक है या बच्ची मांगलिक है, मांगलिक योग कौन से ग्रह में बनता है, किस स्थान पर बनता है, प्रथम है, चौथा है, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में मांगलिक माना जाता है, आंशिक मांगलिक है या पूर्ण रूप से मांगलिक है, या ग्रह मित्र पक्ष में है या शत्रु पक्ष में है, तो इस हिसाब से हम जो है वर्ग मिलान करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो इन बातों को विशेष रूप से देखा जाता है, महत्व दिया जाता है, उसी आधार पर उनकी जन्मपत्रिका मिलाई जाती है। जैसे कि वरवधु के लिए इसमें मांगलिक दोष है, दोनों मांगलिक हों अथवा मांगलिक एक हो एक ना हो तो ये नहीं होगा, या दोनों मांगलिक होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए।
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि निर्माण के साथ मिले ज्योतिष शास्त्र की गणना इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके माध्यम से नवजात शिशु के पूरे व्यक्तित्व को आसानी से देखा जा सकता है। नागपुर से आए कोल इंडिया से रिटायर्ड अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र को कैसे देखा और समझा जा सकता है।
कुंडली यदि हम देखें तो उसमें 12 भाव रहते हैं। 12 भाव क्या है? प्रथम भाव तन का है, तो इससे मालूम होता है कि व्यक्ति का शरीर कैसा रहेगा, उसकी बनावट कैसी रहेगी, कितनी मजबूती रहेगी, कैसा रहेगा वो। दूसरा रहता है धन भाव, वहाँ से मालूम हो सकता है कि उसका धन कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या रहेगी। तृतीय भाव रहता है उसका पराक्रम साहस का, उसका साहस कैसा रहेगा, जैसा साहस रहेगा जीवन में वैसी उन्नति वो करेगा। तो चतुर्थ भाव जो है वो सुख को और माता के बारे में बताता है, उसके सुख की स्थिति क्या रहेगी। पंचम भाव उसकी विद्या का है और संतान का है, वहाँ से विद्या और संतान के बारे में मालूम होता है। छठवां भाव रोग का है और जो है शत्रुओं का भाव है, वहाँ से रोग और शत्रु के बारे में मालूम हो सकता है। सप्तम भाव पत्नी का पति का है और अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव कहलाता है। नवम भाव धर्म और भाग का कहलाता है। दसम भाव कर्म का और पिता का कहलाता है। एकादश भाव आदमी की आय का, कैसी आय करेगा। और बारहवां भाव व्यय का होता है। इस तरह एक कुंडली के द्वारा हम व्यक्ति के बारे में पूरा जीवन का सार निकाल सकते हैं और उसको उपाय बता सकते हैं कि इन इन उपाय को आप करो, इस तरह आप रहो तो जीवन में आपकी तरक्की हो सकती है।
अगर हम समागम को आयोजित करने वाले आयोजक की बात ना करें तो आज का कार्यक्रम अधूरा ही कहलाएगा।
ब्रह्म ज्योतिष समागम, जिसमें देश भर के जाने माने ज्योतिषविद एकत्रित हुए, इन मोतियों को एक साथ पिरोया भोपाल के आचार्य राजेश दुबे ने। आइए सुनते हैं आचार्य राजेश दुबे से इस समागम का उद्देश्य।
ब्रह्म ज्योतिष समागम, हमारे यहाँ पर जितनी भी गुप्त विद्या उसे ब्रह्म कहा गया है, एक बात। दूसरा, उसका जो अनुपालन करता उसे ब्राह्मण कहा गया है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्रह्म शब्द लगने से लोग उसे ब्राह्मण से जोड़ के देखते हैं। अब मैं यूँ कहूँ कि ये ब्राह्मण ज्योतिष सम्मेलन था तो ये भी ठीक है, क्योंकि समागम है ये सम्मेलन ही समागम। इसमें ब्राह्मण वंश में जो जन्म लेते हैं, जो ज्योतिष कर्म करते हैं, जो आध्यात्म कर्म करते हैं, तो उनकी सुचिता क्या है। हम ब्रह्म ज्योतिष समागम का जो एक आंदोलन अब चालू किए हैं और इसके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में घूमकर हम यही कहेंगे कि यदि आपको ज्योतिष से संबंधित शिक्षा लेना हो तो आप संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, उसके बाद उस पर अध्ययन करें और वो सरकारी डिग्रियां लें।
धर्म और ज्योतिष के नाम पर लोगों की भावनाओं से ठगी की घटनाएं निरंतर बढ़ने से स्वयं ब्रह्मा की उत्पत्ति कहे जाने वाले ज्योतिष शास्त्र पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, जबकि एक सच्ची ज्योतिष सलाह जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन कर सकती है, ठीक चिकित्सा शास्त्र की तरह जीवन के लिए उपयोगी।
और ब्रह्म ज्योतिष समागम एक ऐसा ही प्रयास कहा जा सकता है। आशा की जा सकती है ये प्रयास अपने लक्ष्य को पा सकेगा। लोगों के बीच ज्योतिष और उससे जुड़ी तमाम विधाओं की नई छवि निर्मित हो सकेगी।
कार्यक्रम में आज इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।